एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज हम एक ऐसे जबरदस्त दिमाग की कहानी में उतर रहे हैं जिनके बिना शायद आज हमारी जिंदगी, हमारी तकनीक, हमारी दुनिया बिल्कुल अलग होती। बात हो रही है एलन मैथिसन ट्यूरिंग की, एक गणितज्ञ, तर्कशास्त्री, कोड ब्रेकर और वो इंसान जिन्हें हम आज कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक मानते हैं। आज समझेंगे कि उनके विचार इतने क्रांतिकारी क्यों थे और आज भी हमारे लिए इतने मायने क्यों रखते हैं।
बिल्कुल, और ट्यूरिंग की कहानी सिर्फ उनके दिमागी कारनामों की नहीं है बल्कि एक ऐसे इंसान की भी है जिसने इतिहास के, आप कह सकते हैं, तूफानी दौर में जिया, जिसने सिद्धांतों से दुनिया बदली लेकिन जिसका अपना जीवन वो गहरी त्रासदियों और सामाजिक जटिलताओं से घिरा रहा। आज हम स्रोतों के आईने में उनके क्रांतिकारी विचारों, उनकी जिंदगी के अहम पड़ावों और उनकी कभी न मिटने वाली विरासत को जरा टटोलने की कोशिश करेंगे।
ट्यूरिंग का जीवन मतलब 1912 से 1954 वाकई बड़े उथल पुथल वाले समय में गुजरा। दो विश्व युद्ध, तकनीक का शुरुआती दौर, दुनिया तेजी से बदल रही थी। उनका जन्म लंदन में हुआ, एक ऐसे परिवार में जिसका ताल्लुक ब्रिटिश राज के प्रशासन से था। माहौल कैसा था उस वक्त, मतलब बौद्धिक तौर पर?
हाँ, वो दौर बौद्धिक रूप से बहुत ही दिलचस्प था। एक तरफ सोचिए, आइंस्टाइन जैसे लोग ब्रह्मांड को समझने के हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल रहे थे, तो दूसरी तरफ कर्ट गॉडल जैसे गणितज्ञ गणित की अपनी सीमाओं को दिखा रहे थे। तर्कशास्त्र में रसल और वाइटर जैसे दिग्गजों का काम सामने आ रहा था। और ट्यूरिंग अकेले नहीं थे इस सब में, उनके साथ जॉन वॉन न्यूमैन जैसे लोग कंप्यूटर का ढांचा सोच रहे थे, क्लॉड शैनन सूचना को गणितीय रूप दे रहे थे और नॉबर्ट वीनर वो मशीनों और इंसानों के बीच नियंत्रण और संचार के विज्ञान यानी साइबरनेटिक्स की नींव रख रहे थे।
अच्छा,
फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, उसने तो जैसे व्यावहारिक जरूरतों के चलते कंप्यूटिंग के विकास को पंखी लगा दिए, और बाद में फिर शीत युद्ध का तनाव, उसने इसे शुरुआती दिशा दी। तो इसी गहमागहमी के बीच ट्यूरिंग के विचार पनप रहे थे।
उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में क्या पता चलता है? गणित में तो वो बचपन से ही तेज थे, है ना?
हाँ, उनकी प्रतिभा तो बचपन में ही दिखने लगी थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके स्कूल, जो मशहूर शेरबोन स्कूल था, वहां उनके इस प्रतिभा को बहुत सराहा नहीं गया। वहां पारंपरिक शिक्षा पर ज्यादा जोर था और ट्यूरिंग का दिमाग वो कुछ ज्यादा ही अलग ढंग से चलता था, तो शिक्षकों के साथ उनकी अक्सर ठन जाती थी।
और उनकी निजी जिंदगी में एक बड़ा हादसा भी हुआ था जिसका जिक्र आता है।
हाँ, उनके बहुत करीबी दोस्त थे क्रिस्टोफर मॉकम, स्कूल में ही उनकी दोस्ती हुई थी, लेकिन टीबी की वजह से क्रिस्टोफर की बहुत कम उम्र में मौत हो गई और इस घटना ने ट्यूरिंग को अंदर तक हिला दिया था। इसने उनकी जो पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं थीं उन पर सवाल खड़े कर दिए, और शायद यहीं से उनके मन में ये सवाल और गहरे बैठ गए कि इंसानी चेतना, हमारा दिमाग, ये सब आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ शरीर और रसायन का खेल है? ये सवाल बाद में उनके काम में बार बार झलकता है, दिखता है।
अकेडमिक सफर की बात करें तो वे किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज गए और फिर अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने महान तर्कशास्त्री अलोंजो चर्च के साथ अपनी पीएचडी पूरी की। चलिए अब उनके उन बड़े आइडियाज पर आते हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटेबिलिटी की। 1936 में उनका एक पेपर आया जिसने ट्यूरिंग मशीन का जिक्र किया। ये सुनने में किसी असली लोहे लक्कड़ की मशीन जैसा लगता है, लेकिन ये क्या था असल में?
हाँ, ये कमाल की चीज थी, और जैसा आपने कहा, ये कोई असली मशीन नहीं थी बल्कि एक दिमागी औजार था, एक काल्पनिक मशीन। ट्यूरिंग ने इसके जरिए पहली बार ये साफ साफ परिभाषित किया कि किसी चीज के कंप्यूटेबल यानी गणना योग्य होने का मतलब क्या है।
अच्छा,
यानी क्या कोई ऐसी पक्की विधि, कोई स्टेप बाय स्टेप तरीका है जिसे हम आज एल्गोरिथम कहते हैं, जिससे किसी समस्या को हल किया जा सके?
तो ये एक तरह से गणित की सीमाओं को समझने का एक तरीका था कि क्या हल हो सकता है और क्या नहीं।
बिल्कुल, इसी ट्यूरिंग मशीन के विचार से उन्होंने ये साबित किया कि गणित में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका कोई एल्गोरिथम हो ही नहीं सकता, उन्हें किसी भी मशीन से, किसी भी तय प्रक्रिया से हल नहीं किया जा सकता। सोचिए, एक कितना बड़ा दावा था उस समय।
हाँ बिल्कुल,
इसने गणित की दुनिया के एक बहुत बड़े सवाल, जिसे डेविड हिल्बर्ट ने एंटशाइडुंग्स प्रॉब्लम यानी निर्णय समस्या कहा था, उसका जवाब दिया। हिल्बर्ट पूछ रहे थे कि क्या हर गणितीय कथन के लिए कोई ऐसी, समझ लीजिए, जादुई विधि हो सकती है जो बता दे कि वो सच है या गलत। ट्यूरिंग ने दिखाया कि ऐसी कोई सार्वभौमिक विधि नहीं है।
वाह,
और इसने कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं उसकी सैद्धांतिक हद तय कर दी। आज के सारे कंप्यूटर वो इसी सिद्धांत पर टिके हैं।
ये तो दिमाग चकरा देने वाली बात है सच में।
और फिर आया उनका दूसरा बड़ा आइडिया, मशीन इंटेलिजेंस। 1950 का उनका लेख और वो मशहूर ट्यूरिंग टेस्ट। हाँ, यहाँ ट्यूरिंग ने एक और गहरा और शायद उस समय के लिए तो बहुत चौंकाने वाला सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? अब ये सवाल अपने आप में बड़ा दार्शनिक है। इस पर तो सदियों बहस हो सकती है कि भाई सोचने का मतलब क्या है।
सही बात है।
तो ट्यूरिंग ने इस बहस से बचने का एक बड़ा ही कह सकते हैं चालाकी भरा रास्ता निकाला। उन्होंने कहा चलो इसे परखने का एक व्यवहारिक तरीका बनाते हैं, इमिटेशन गेम यानी नकल का खेल।
ये कैसे काम करता है जरा बताएं।
कल्पना कीजिए कि एक इंसान है परीक्षक, वो दो लोगों से टाइप करके बात कर रहा है। उसे नहीं पता कि उन दो में से एक इंसान है और एक कंप्यूटर। अगर वो परीक्षक बातचीत के आधार पर यह नहीं बता पाता कि कौन मशीन है और कौन इंसान, तो हमें उस मशीन को बुद्धिमान मान लेना चाहिए।
तो मतलब अगर मशीन बिल्कुल इंसान की तरह व्यवहार कर सकती है बातचीत में, तो उसे सोचने वाला माना जाए।
इसने तो बुद्धि की परिभाषा ही बदल दी। मतलब क्या ये सोचता है से हटकर क्या ये सोचने जैसा व्यवहार कर सकता है पर जोर आ गया। बिल्कुल, ये चेतना या समझ जैसी जटिल चीजों में फंसे बिना मशीन के व्यवहार पर आधारित एक पैमाना था। इसके पीछे ट्यूरिंग का शायद ये विश्वास था कि इंसानी दिमाग भी आखिरकार एक बहुत ही जटिल किस्म की सूचना प्रोसेस करने वाली मशीन ही है। हालांकि इस टेस्ट की बाद में बहुत आलोचना भी हुई, ये भी सच है।
हाँ, मैंने भी पढ़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ अच्छी नकल है, असली समझ या चेतना नहीं। वो जॉन सर्ल का चाइनीज रूम वाला तर्क शायद इसी तरफ इशारा करता है।
सही कहा, वो बहस आज भी जारी है, क्या सिर्फ व्यवहार बुद्धि का पैमाना हो सकता है। लेकिन इस टेस्ट का महत्व इस बात में है कि इसने पहली बार मशीन इंटेलिजेंस पर एक ठोस परखने लायक चर्चा शुरू की। आज भी जब हम एआई की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्यूरिंग के इस सवाल पर लौटते ही हैं।
और उनका तीसरा बड़ा काम, जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं, वो जीव विज्ञान से जुड़ा था, मॉर्फोजेनेसिस। ये क्या था?
हाँ, ये भी कमाल का काम था। 1952 में उन्होंने एक पेपर लिखा जिसका नाम था द केमिकल बेसिस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, यानी आकृति बनने का रासायनिक आधार। इसमें उन्होंने पूछा कि प्रकृति में पैटर्न कैसे बनते हैं। जैसे सोचिए, तेंदुए के शरीर पर धब्बे या जेब्रा की धारियां कैसे बन जाती हैं, जबकि शुरुआत में तो भ्रूण एक जैसी कोशिकाओं का गोला होता है।
हाँ, ये तो बड़ा रहस्यमय लगता है, कैसे होता होगा ये?
ट्यूरिंग ने इसका गणितीय जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने रिएक्शन डिफ्यूजन समीकरणों का एक मॉडल बनाया। ये दिखाता है कि कैसे दो साधारण रसायनों के आपसी रिएक्शन और उनके फैलने यानी डिफ्यूजन की प्रक्रिया से अपने आप ही जटिल और नियमित पैटर्न बन सकते हैं।
अच्छा।
गणित से?
हाँ,
गणित से। ये उनकी सोच के दायरे को दिखाता है, कैसे वे गणित के औजारों से जीव विज्ञान की पहेलियां सुलझाने निकले थे। आज भी उनके ये विचार अंगों के विकास से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों को समझने में मददगार साबित हो रहे हैं।
तो अगर हम उनके मुख्य कामों को संक्षेप में देखें, 1936 का कंप्यूटेबिलिटी और ट्यूरिंग मशीन वाला पेपर, 1950 का मशीन इंटेलिजेंस और ट्यूरिंग टेस्ट वाला लेख, और 1952 का ये मॉर्फोजेनेसिस वाला काम, ये तो हो गए उनके सैद्धांतिक काम। लेकिन उनका व्यवहारिक योगदान भी तो जबरदस्त था, खासकर दूसरे विश्व युद्ध में।
ओह, वो तो अद्भुत कहानी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के बैलचले पार्क में उनका काम किसी चमत्कार से कम नहीं था। सच में जर्मन सेना एक बेहद जटिल मशीन एनिग्मा का इस्तेमाल करती थी अपने संदेशों को कोड करने के लिए। उन कोड्स को तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था। ट्यूरिंग और उनकी टीम ने न सिर्फ उन कोड्स को तोड़ा, बल्कि ऐसा करने के लिए बॉम्ब मतलब बोंगे नाम की एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन भी डिजाइन की।
और कहा जाता है कि इस काम ने युद्ध का रुख ही बदल दिया था, मतलब इतना असर।
बिल्कुल, अनुमान तो यह है कि एनिग्मा कोड को तोड़ने से युद्ध कम से कम 2 साल पहले खत्म हो गया और लाखों जाने बची।
2 साल, लाखों जाने?
हाँ, ये सोचना ही अविश्वसनीय है। लेकिन विडंबना देखिए, सुरक्षा कारणों से उनका ये योगदान दशकों तक गुप्त रखा गया। दुनिया को सालों तक पता ही नहीं चला कि ट्यूरिंग ने कितना बड़ा काम किया था।
युद्ध के बाद भी वो कंप्यूटर बनाने के काम में लगे रहे थे।
हाँ बिल्कुल, युद्ध के बाद उन्होंने नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी में एसी यानी ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन का डिजाइन तैयार किया। ये उन शुरुआती कंप्यूटरों में से था जो अपने निर्देश यानी प्रोग्राम को अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे आज के कंप्यूटर काम करते हैं।
अच्छा, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट।
हाँ, ये स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट जॉन वॉन न्यूमन के साथ साथ ट्यूरिंग के दिमाग की भी उपज थी। बाद में वे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने मैनचेस्टर मार्क वन कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जैसे विचारों की भी शुरुआत की थी, जो आज AI की दुनिया में इतने छाए हुए हैं।
से कैसे अलग या समान था, कुछ तुलना कर सकते हैं?
हाँ, ये दिलचस्प तुलना है। जैसे अलोंजो चर्च, जिनके साथ ट्यूरिंग ने प्रिंसटन में काम किया था, उन्होंने लैम्डा कैलकुलस नाम का एक अलग गणितीय सिस्टम बनाया था। बाद में पता चला कि ट्यूरिंग मशीन और लैम्डा कैलकुलस दोनों कंप्यूटेशन को परिभाषित करने के दो बराबर शक्तिशाली तरीके हैं। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कर्ट गोडिल से तुलना भी महत्वपूर्ण है। गोडिल ने दिखाया कि गणित में ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता, मतलब प्रमाण की सीमा। वहीं ट्यूरिंग ने दिखाया कि गणित में ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हल नहीं किया जा सकता, यानी गणना नहीं की जा सकती, गणना की सीमा।
अच्छा,
दोनों ने अपने अपने तरीके से गणित की पूर्णता और सर्वक्षमता के विचार को चुनौती दी थी।
और जॉन वॉन न्यूमन, उनके साथ क्या कनेक्शन था?
वॉन न्यूमन और ट्यूरिंग दोनों ने स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा में योगदान दिया, लेकिन शायद कह सकते हैं कि वॉन न्यूमन का जोर ज्यादा कंप्यूटर के आर्किटेक्चर यानी उसकी बनावट पर था, जबकि ट्यूरिंग सॉफ्टवेयर और कंप्यूटेशन के जो सैद्धांतिक पहलू थे उनमें ज्यादा गहरे उतरे। और ट्यूरिंग का दायरा भी ज्यादा फैला हुआ था, गणित, तर्कशास्त्र, कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, यहां तक कि जीव विज्ञान तक। उनका ये अंतःविषय दृष्टिकोण शायद लाइबनिज़ या लियोनार्डो दा विंची जैसा था।
तो ये सब सिद्धांत, युद्ध के कारनामे और ये तुलनाएं तो ठीक है, लेकिन आज इस डिजिटल युग में ट्यूरिंग की विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है, उसका असर क्या है?
अरे, आज उनकी विरासत हर जगह है। उन्हें सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और AI का पिता माना जाता है। कंप्यूटिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान ट्यूरिंग अवार्ड उन्हीं के नाम पर है। आप जिस स्मार्टफोन, लैपटॉप या इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब उन बुनियादी सिद्धांतों पर चल रहे हैं जिनकी नींव ट्यूरिंग ने रखी थी।
और उनके विचार जैसे ट्यूरिंग टेस्ट, कंप्यूटेबिलिटी, वो आज कितने प्रासंगिक हैं?
ट्यूरिंग टेस्ट, जैसा हमने कहा, आलोचनाओं के बावजूद AI पर बहस का केंद्र बना हुआ है। कंप्यूटेबिलिटी का सिद्धांत हमें सिखाता है कि कंप्यूटर सर्वशक्तिमान नहीं है, उनकी भी सीमाएं हैं। ये आज एल्गोरिदम डिजाइन और साइबर सुरक्षा जैसी चीजों में बहुत महत्वपूर्ण है।
सही।
और उनका वो मॉर्फोजेनेसिस का काम, वो आज सिस्टम्स बायोलॉजी, दवाइयों के विकास और नए मटेरियल बनाने जैसे क्षेत्रों को प्रेरित कर रहा है। जब हम आज AI के पूर्वाग्रह, मशीन लर्निंग की नैतिकता या कृत्रिम चेतना की संभावना पर बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ट्यूरिंग के उठाए सवालों से ही जूझ रहे होते हैं।
उनकी विरासत का एक और पहलू भी है जो दुखद है, लेकिन शायद उतना ही महत्वपूर्ण है।
हाँ बिल्कुल, वो है उनका उत्पीड़न। 1952 में उस समय ब्रिटेन में समलैंगिकता एक अपराध था। ट्यूरिंग पर घोर अभद्रता का मुकदमा चलाया गया। उन्हें जेल या रासायनिक बधियाकरण, मतलब केमिकल कैस्ट्रेशन में से एक चुनने को कहा गया। उन्होंने इलाज चुना जिसके भयानक शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव हुए। दो साल बाद 1954 में उनकी मृत्यु साइनाइड जहर से हुई। इसे आमतौर पर आत्महत्या माना जाता है।
ये सोचना भी भयानक है कि इतने प्रतिभाशाली दिमाग के साथ समाज ने ऐसा सलूक किया।
बिल्कुल, ये एक व्यक्तिगत त्रासदी तो थी ही, पर साथ ही ये समाज के पूर्वाग्रह और असहिष्णुता की कीमत का एक बहुत ही स्याह उदाहरण भी है। सालों बाद 2009 में ब्रिटिश सरकार ने माफी मांगी और 2013 में महारानी ने उन्हें मरणोपरांत शाही माफी दी। आज ट्यूरिंग न सिर्फ विज्ञान के नायक हैं, बल्कि LGBTQ+ अधिकारों के संघर्ष के एक प्रतीक भी बन गए हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रतिभा को फलने फूलने के लिए एक खुले और सहिष्णु समाज की कितनी जरूरत होती है।
उनके कुछ कथन भी बहुत मशहूर हैं, जो उनकी सोच की झलक देते हैं। कुछ याद है?
हाँ, जैसे उनकी 1950 के पेपर का वो वाक्य है, मेरा मानना है कि सदी के अंत तक शब्दों का उपयोग और सामान्य शिक्षित राय इतनी बदल जाएगी कि कोई भी मशीनों के सोचने के बारे में बिना किसी विरोधाभास की उम्मीद किए बात कर सकेगा। सोचिए 1950 में ये कहना कितनी दूर की कौड़ी थी।
हाँ वाकई। और एक और है जो उनकी विनम्रता और महत्वाकांक्षा दोनों दिखाता है। हम केवल थोड़ी दूर आगे देख सकते हैं, लेकिन हम वहां बहुत कुछ देख सकते हैं जिसे करने की आवश्यकता है। ये कंप्यूटिंग के भविष्य को लेकर उनकी उत्सुकता और साथ ही जमीनी हकीकत की समझ दोनों दिखाता है।
और वो वाक्य जो फिल्म द इमिटेशन गेम से बहुत लोकप्रिय हुआ, हालांकि शायद उन्होंने सीधे तौर पर ऐसा कहा ना हो, पर उनकी जिंदगी की सच्चाई जरूर बयां करता है। कभी कभी ये वो लोग होते हैं जिनसे कोई कुछ भी उम्मीद नहीं करता है, जो वे काम करते हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता।
ये उनकी अपरंपरागत सोच और शायद उनके अपने अनुभवों का प्रतिबिंब लगता है। बिल्कुल, ट्यूरिंग की शख्सियत भी काफी दिलचस्प थी। मतलब कुछ अजीबोगरीब किस्से भी हैं उनसे जुड़े हुए।
हाँ, वे थोड़े विलक्षण किस्म के इंसान थे। जैसे एक किस्सा है कि ब्लेचले पार्क में जब चीजें चोरी होने लगीं, तो उन्होंने अपनी कॉफी मग को रेडिएटर से जंजीर से बांध दिया था।
सच में?
हाँ, या फिर वसंत में जब परागकणों से उन्हें एलर्जी होती थी तो वे गैस मास्क पहनकर साइकिल चलाते थे।
अरे वाह, और वे एक बेहतरीन धावक भी थे, ये बात तो बहुत कम लोग जानते होंगे।
अविश्वसनीय रूप से अच्छे, वे लगभग ओलंपिक स्तर के मैराथन धावक थे। 1948 के लंदन ओलंपिक के लिए वो क्वालिफाई करने के बहुत करीब थे। उनका जो सर्वश्रेष्ठ समय था वो उस साल के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता से सिर्फ 11 मिनट धीमा था।
क्या बात है।
कहते हैं कि वे अक्सर तनाव कम करने के लिए या मुश्किल समस्याओं पर सोचते हुए लंबी दूरी तक दौड़ते थे। कभी कभी तो 40-50 किलोमीटर दूर मीटिंग में भी दौड़कर पहुंच जाते थे।
वाह, अद्भुत। और वो चांदी वाली कहानी, वो क्या थी?
हाँ, वो भी मशहूर है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मन हमले का डर बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने अपनी बचत को चांदी की सिल्लियों में बदला और उन्हें ब्लेचले पार्क के पास कहीं जमीन में गाड़ दिया। युद्ध के बाद उन्होंने उन्हें बहुत ढूंढा, यहां तक कि खुद का बनाया हुआ मेटल डिटेक्टर भी इस्तेमाल किया, पर वो चांदी उन्हें कभी वापस नहीं मिली।
कमाल है। उनकी मौत के बारे में भी थोड़ी अनिश्चितता सी है क्या, या ये तय है कि आत्महत्या थी?
देखिए, आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या ही माना गया, साइनाइड जहर से। उनके बिस्तर के पास एक आधा खाया हुआ सेब मिला था जिस पर साइनाइड लगा हो सकता है। इसी आधे खाए सेब से वो अफवाह भी उड़ी कि एप्पल कंप्यूटर का लोगो ट्यूरिंग को श्रद्धांजलि है, लेकिन एप्पल कंपनी ने हमेशा इससे इनकार किया है।
अच्छा,
कुछ लोग मानते हैं कि ये शायद एक दुर्घटना थी किसी प्रयोग के दौरान, लेकिन उनके उत्पीड़न और उसके बाद की जो उनकी मानसिक स्थिति थी उसको देखते हुए आत्महत्या की बात ज्यादा मानी जाती है। तो कुल मिलाकर देखें, एलन ट्यूरिंग एक बहुआयामी शख्सियत थे। वे एक तरफ हमारे डिजिटल युग के निर्माता थे जिनके विचारों ने कंप्यूटिंग और एआई को जन्म दिया, और दूसरी तरफ वे सामाजिक क्रूरता और पूर्वाग्रह के शिकार भी हुए। उनकी कहानी विज्ञान, समाज और इंसानी जज्बे की एक बहुत ही जटिल दास्तान है।
उनका जीवन और काम हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि बुद्धि क्या है, गणना की सीमाएं क्या हैं, और क्या मशीनें कभी सचमुच सोच पाएंगी? ये सवाल ये आज पहले से कई ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं।
और ये भी कि कैसे एक अकेला दिमाग सही समय पर सही सवाल पूछकर दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है।
तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी में और गहरे उतर रहा है, सोच का मतलब क्या है, ये सवाल और भी पेचीदा होता जा रहा है। ट्यूरिंग ने हमें मशीनों के सोचने की संभावना पर विचार करने का एक ढांचा दिया। आज जब हम ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो सीख सकती है, बना सकती है, यहाँ तक कि बातचीत भी कर सकती है, तो हम इंसानी और मशीनी बुद्धि के बीच की रेखा कहाँ खींचेंगे, इस पर सोचना जरूरी है। आउट्रो नरेशन स्टैंडर्ड। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।